लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि ख्रिस्तीय एवं अन्य सभी धर्मों के अनुयायी तथा समस्त शुभचिंतक लोग विश्व में शांति और न्याय को बढ़ावा दें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, मानव के रूप में हम अपने जीवन में अपनी पहचान बनाने की चाह रखते हैं। इसके लिए हम अपने को दूसरों के सामने विभिन्न रूपों में व्यक्त करते, अपने जीवन के कार्यों का बखान करते, अपनी प्रसिद्धि, पहुंच और ओहदे का हवाला देते और अपने नाम को प्रसारित करने का प्रयास करते हैं कि हम कौन हैं या मैं कौन हूँ। हम इसे स्वीकारें या ना स्वीकारें, यही हमारे जीवन की हकीकत है। हमारी व्यक्तिगत पहचान हमें अपने जीवन में मनोवैज्ञानिक रूप से एक तसल्ली प्रदान करती है, जहां हम अपने में दूसरों से अच्छा या बड़ा होने का एहसास करते हैं। हमें अपने में गर्व होता है कि हम भी अपने में कोई तो हैं। श्रोताओ, आज माता कलिसिया प्रभु यीशु के बपतिस्मा का त्योहार मनाती है। यर्दन में उनका योहन बपतिस्मा दाता के हाथों से बपतिस्मा ग्रहण करना हमें अपने बपतिस्मा की याद दिलाती है। श्रोताओ, यदि सही अर्थ में देखा जाए तो ख्रिस्तियों के रूप में बपतिस्मा संस्कार ही हमारे जीवन की असल पहचान है, जहां हम त्रित्व में ईश्वर में संयुक्त होते और पुत्र में एक नया जन्म पाते और एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। आइए हम यीशु के बपतिस्मा हेतु लिए गए आराधना विधि चिंतन सुसमाचार पाठ का श्रवण करते हुए अपने में इस बात की थाह लें कि क्या हम बपतिस्मा में मिले अपने नए जीवन के बुलावे को उचित रूप में जीते हैं। हमारे बपतिस्मा का अर्थ हमारे लिए क्या है?
उस समय ईसा योहन से बपतिस्मा लेने के लिए गलीलिया से यर्दन के तट पर पहुँचे। योहन ने यह कहते हुए उन्हें रोकना चाहा, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है और आप मेरे पास आते हैं? परंतु ईसा ने उसे उत्तर दिया, अभी ऐसा ही होने दीजिए, यह हमारे लिए उचित है कि हम इस तरह धर्म विधि पूरी करें। इस पर योहन ने ईसा की बात मान ली। बपतिस्मा के बाद ईसा तुरंत जल से बाहर निकले, उसी समय स्वर्ग खुल गया और उन्होंने ईश्वर के आत्मा को कपोत के रूप में उतरते और अपने ऊपर ठहरते देखा और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ।
श्रोताओ, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें बपतिस्मा में मिले ख्रिस्तीय जीवन में अपने नए जन्म के सार और पहचान को जानने और समझने की कृपा प्रदान करे, जिससे हम मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त की भांति अपने जीवन में भेजे जाने के उद्देश्य को पूरा कर सकें। श्रोताओ, नबी इसाईस के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमें यीशु ख्रिस्त के बुलावे की चर्चा करता है, जहां वे पिता के द्वारा दुनिया में इसलिए भेजे गए कि वे उनके कार्यों को पूरा कर सकें। यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ, मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये वचन न केवल यीशु ख्रीस्त के लिए हैं, वरन ये वचन हम में से हर एक ख्रीस्त विश्वासी के लिए है, जिसे पिता ईश्वर प्रेम में घोषित करते हैं। जिस भांति पिता ने अपने बेटे को अपने कार्यों को पूरा करने हेतु दुनिया में भेजा, उसी भांति ईश्वर पिता हमें भी अपने बेटे के कार्यों को दुनिया में सुचारू रूप से जारी रखने हेतु भेजते हैं। इसके लिए वे हमें संभालते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें चुना है। वे हम पर खुश होते जिससे हम खुशी स्वरूप अपने जीवन में अनुभव करते हैं। प्रेरित चरित से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमारे ईश्वर में चुने जाने की बात को आगे ले चलता और हमें कहता है, ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, चाहे हम किसी भी देश या राष्ट्र के क्यों ना हों। यदि मानव ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। श्रोताओ, ईश्वर में बपतिस्मा प्राप्त करने के द्वारा हम सभी उनकी संतान बनते हैं, जो हमें उनकी नजरों में एक समान बनाता है, चाहे हम किसी भी देश, रंग रूप और जाति के क्यों ना हों। उसी भांति कोई भी व्यक्ति यदि ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्म के अनुसार आचरण करता तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। आज का पहला और दूसरा पाठ हमारा ध्यान जीवन के सार की ओर आकर्षित कराता है, अर्थात ईश्वर ने हमें जीवन दिया है जिससे हम उन पर श्रद्धा रखें और उनकी योजना के अनुरूप अपने जीवन में अच्छे कार्यों को पूरा करें, जिसे धर्माचरण की संज्ञा दी गई है। आज का प्रस्तुत सुसमाचार हमारे लिए इस तथ्य को पूर्ण रूपेण यीशु के जीवन में चरितार्थ करता है। यीशु पिता के द्वारा दुनिया में भेजे गए और ईश पुत्र होने के नाते उन्हें बपतिस्मा संस्कार लेने की कोई जरूरत नहीं थी। इसे स्वयं योहन बपतिस्ता भी अनुभव करते और कहते हैं, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है और आप मेरे पास आते हैं। लेकिन यीशु अपनी नम्रता में उन्हें कहते हैं, अभी ऐसा ही होने दीजिए, यह हमारे लिए उचित है कि हम इस तरह धर्म विधि पूरी करें। श्रोताओ, यीशु संहिता के नियमों को पूरा करने आए, ना कि उन्हें तोड़ने और उन्हें रद्द करने हेतु। इसे हम यर्दन नदी के तट पर उनके बपतिस्मा में स्पष्ट रूप से देखते हैं। इस भांति संहिता के नियमों का पालन करते हुए वे अपने को पूरी तरह मानव समाज का अंग बनाते हैं। यीशु की यह पहल हमारा ध्यान इस ओर कराती है कि वे अपने पिता के कार्यों को पूरा करने हेतु आगे बढ़ते हैं, जिसमें पवित्र आत्मा अपनी मुहर लगाते और उन पर प्रकट होते हुए यह घोषित करते हैं, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह यीशु ख्रीस्त के अभिषेक को हमारे लिए व्यक्त करता है, जिसके द्वारा वे अपने पिता की योजना अनुरूप अपने कार्यों को नहीं वरन पिता के कार्यों को पूरा करने हेतु आगे बढ़ते हैं। और यही कारण है कि पिता अपने इकलौते पुत्र यीशु ख्रीस्त में अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। श्रोताओ, यीशु ख्रीस्त का बपतिस्मा आज हमें अपने बपतिस्मा की याद दिलाती है, जहां ईश्वर ने हमें अपने बेटे बेटियों स्वरूप बना लिया है। वे हम पर खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने हमें अपने कार्यों को करने हेतु चुना और नियुक्त किया है। प्रेरित चरित से लिए गए आज के दूसरे पाठ के अंतिम भाग में हम सुनते हैं कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से विभूषित यीशु ख्रीस्त चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। आइए हम पवित्र आत्मा से निवेदन करें कि वे हमें अपने बपतिस्मा के मर्म को समझने हेतु मदद करें, जिससे हम भी त्रित्वमय ईश्वर में अपने अभिषिक्त किए जाने के अर्थ को समझ सकें और पिता के कार्य में समर्पित हों, जो हमें असल पहचान प्रदान करेगा।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने वाटिकन स्थित इथियोपिया कॉलेज की शतवर्षीय जुबली समारोह के अवसर पर वहां उपस्थित इथियोपिया और एरिट्रिया से आए धर्माध्यक्षों कार्डिनल बर्नाहिस, मोनसिन्योर टेस्फामारिम और कॉलेज के फादर रेक्टर एवं वहां काम करने वाले सभी कर्मचारियों और विद्यार्थी पुरोहितों का अभिवादन किया। संत पापा ने कहा कि वाटिकन की दीवारों के भीतर इथियोपियन कॉलेज 100 वर्षों से इथियोपिया की कलीसिया के तीर्थयात्री की धर्मशाला रहा है। सदियों से लोग भौगोलिक रूप से रोम से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्रेरितों के विश्वास के करीब प्रेरित संत पेत्रुस की कब्र के पास ही आपने घर और आतिथ्य पाया है। संत पापा ने इथियोपिया के महान प्रेरित भिक्षु टेस्सा सियोन को भी याद किया, जिन्होंने अपने ज्ञान से रोमन कार्यालय को समृद्ध किया और इथियोपियाई भाषा में नए नियम की छपाई का निरीक्षण किया। संत पापा ने वहां उपस्थित इथियोपिया और एरिट्रिया के विद्यार्थी पुरोहितों को संबोधित करते हुए कहा कि इथियोपिया और एरिट्रिया की एक ही परंपरा की दो कलीसियाओं से प्राचीन परंपरा के साथ हमारे बीच अपनी भूमि के इतिहास की समृद्धि लाते हैं, जहां आप इस्लाम और यहूदी धर्मों को मानने वालों के साथ मिलकर रहते हैं। संत पापा ने कहा, आपसे मिलने के बाद मैं इथियोपिया और एरिट्रिया के उन सभी भाई बहनों को याद करता हूँ जो युद्ध के कारण भयानक गरीब का जीवन जी रहे हैं। कुछ महीनों पहले युद्ध समाप्त हुआ है। संत पापा ने युद्ध समाप्ति के लिए ईश्वर और उन लोगों को धन्यवाद दिया जिन्होंने शांति के लिए काम किया। उन्होंने कहा, मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि हम दोनों पक्षों द्वारा अनुभव किए गए वर्षों के दर्द को संजोए रखेंगे। हम जातीय समूहों और देशों के बीच विभाजन में नहीं पड़ेंगे। आप पुरोहित हैं, आप हमेशा अच्छे संबंधों और शांति के निर्माता बने। ईश्वर के इस उपहार को आप अपने पल्लीवासियों के बीच साझा करें। सुलह का मार्ग आंतरिक और बाहरी घावों का इलाज करेगा जो आपके देश के बच्चों और युवा लोगों के भविष्य को सफल बनाएगा। अंत में संत पापा ने एरिट्रिया और इथियोपिया की कलीसिया को शांति की महारानी माता मरियम के सिपुर्द किया।
वैटिकन स्थित प्रेरितिक आवास संत माता के प्रार्थनालय में शुक्रवार 10 जनवरी को संत पापा फ्रांसिस ने ख्रिस्त त्याग अर्पित किया तथा प्रवचन में इस बात पर चिंतन किया कि प्रेम किस तरह ठोस कार्यों में प्रकट होता है। संत पापा ने प्रवचन में प्रेरित संत योहन के पहले पत्र से लिए गए पाठ पर चिंतन किया, जिसमें प्रेम विषय पर प्रकाश डाला गया है। उन्होंने कहा कि प्रेरित ने प्रेम को समझा और अनुभव किया था, और जब उसने यीशु के हृदय में प्रवेश किया तो समझ गया कि यह किस तरह अपने आप प्रकट होता है। अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि किस तरह हमें प्यार किया गया है और हम किस तरह प्यार करें। संत पापा ने कहा, सच्चाई यह है कि हम ईश्वर को प्यार करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें पहले प्यार किया है। प्रेम उन्हीं में उत्पन्न होता है। मैं प्रेम करता हूँ अथवा मैं प्रेम करना शुरू करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि उन्होंने मुझे पहले प्यार किया है। यदि उन्होंने हमें पहले प्यार नहीं किया होता तो हम भी उन्हें प्यार नहीं कर सकते। यदि एक नवजात शिशु बोल सकता तो वह अवश्य प्रकट करता कि वह अपने माता पिता द्वारा प्रेम किया गया महसूस करता है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को उसी तरह प्यार करते हैं जैसा ईश्वर करते हैं, और यही प्रेम करने की हमारी क्षमता को उत्पन्न करता और बढ़ाता है। संत योहन ने दूसरी बात कही है कि यदि कोई कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूँ किंतु अपने भाई बहनों से घृणा करता है तो वह झूठा है। संत पापा ने कहा कि संत योहन उस व्यक्ति को मूर्ख अथवा गलत व्यक्ति नहीं कहते बल्कि झूठा कहते हैं। संत योहन कहते हैं कि बाइबल में इसके बारे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह शैतान का तरीका है। नए व्यवस्था में इसे झूठ का पिता कहा गया है। संत पापा ने कहा कि यदि हम कहते हैं कि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं किंतु अपने भाई से घृणा करते हैं तब हम झूठे हैं। प्रेम करने की सफाई कई लोग देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं घृणा नहीं करता किंतु कुछ लोग मुझे चोट पहुंचाते और मुझे अस्वीकार करते हैं क्योंकि वे असभ्य या अशिष्ट हैं। संत पापा ने कहा कि यह प्रेम के ठोस स्वरूप को कम आंकना है जिसके बारे योहन कहते हैं कि जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता जिसको वह देख सकता है तो वह ईश्वर को कैसे प्यार कर सकता जो अदृश्य है। संत पापा ने प्रेम के एक दूसरे आयाम पर भी प्रकाश डाला, एक ऐसा आयाम जो लोगों को प्रेम करने से रोक देता है, और यह आयाम है दूसरों के जीवन में मध्यस्थ नहीं बनने की चाह। संत पापा ने कहा कि यह भी सही नहीं है क्योंकि प्रेम अच्छा काम करने में अपने आप प्रकट होता है। सच्चा प्रेम जीवन के दिनचर्या में प्रकट होता है। उन्होंने संत अल्बर्ट हतादो के शब्दों में कहा, बुराई नहीं करना अच्छा है क्योंकि अच्छा नहीं करना बुरा है। सच्चा प्रेम आपको काम करने के लिए प्रेरित करेगा, प्रेम के कार्यों में हाथ गंदा करने के लिए। संत पापा ने प्रार्थना की कि प्रभु हमें सच्चाई की शिक्षा दे, पहले प्यार किए जाने का एहसास करने दे और भाई बहनों को प्यार कर पाने का साहस दे। साल 2019 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार विजेता ब्रदर पीटर तबीकी ने संत पापा फ्रांसिस से मुलाकात की। केन्या के ब्रदर पीटर फ्रांसिस्कन ऑर्डर के सदस्य हैं।
उधर भारतीय कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेशियस ने देश के एक नए नागरिकता कानून पर चिंता व्यक्त की जो लोगों को विभाजित कर रहा है। उन्होंने देश में एकजुटता और धर्म निरपेक्षता को बढ़ावा देने का आह्वान किया। नया कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के कुछ अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए अनुमति देता है जो 2015 से पहले भारत में बस गए थे, लेकिन उन मुसलमानों को छोड़कर जो भारत की आबादी का लगभग 14% हिस्सा बनाते हैं। मुसलमानों के प्रति भेदभावपूर्ण और संविधान की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ 11 दिसंबर को अपनाए गए कानून के बाद से देश भर में विरोध प्रदर्शनों में 20 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। कार्डिनल ग्रेसियस ने यह बात भारत के कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन CCBI के एक नए सचिवालय भवन के उद्घाटन के अवसर पर कही। CCBI देश के कैथोलिक लैटिन संस्कार धर्माध्यक्षों को एक साथ लाता है। कार्डिनल ने 27 दिसंबर को एक बयान में जो कहा था उसे दोहराया। उन्होंने कहा, नागरिकता संशोधन कानून के बारे में चल रहे विवाद और विरोध प्रदर्शन सभी नागरिकों के लिए बहुत चिंता का कारण है और देश को नुकसान पहुंचा रहा है। कार्डिनल ग्रेशियस ने कानून का विरोध करने वालों के साथ सरकारी बातचीत कर न्याय, एकता और निष्पक्षता के साथ आगे बढ़ने का रास्ता खोजने का सुझाव दिया। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।